डेनियल की पुस्तक संख्या 143,
भविष्यवाणी के प्रतिमानों का अनावरण, अंतिम राष्ट्रपति और पशु की प्रतिमा।
बाइबल की भविष्यवाणी का पहला राज्य बाबुल था, और बाबुल के बारे में दी गई भविष्य सूचक गवाही में पहले और अंतिम राजा को विशेष रूप से और उद्देश्यपूर्वक भविष्यवाणी के प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया गया। दूसरे राज्य मेद फारस में पहले दो राजाओं की, जिनमें से एक वो था जिसने तीन फरमानों में से पहला जारी किया, जिससे प्राचीन इसराइल को यरूशलेम लौटने की अनुमति मिली, और उसके बाद के उन दो राजाओं की जिन्होंने दूसरा और तीसरा फरमान दिया विशेष रूप से पहचान की गई। उसी प्रकार तीसरे राज्य यूनान के इतिहास में सिकंदर महान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उस पराक्रमी राजा तथा उसके बाद आने वाले सेनापतियों और राजाओं की भी भविष्यवाणी के वचन में पहचान की गई। मूर्तिपूर्जक रोम का चौथा राज्य उस राज्य के शासकों और सम्राटों को विशेष रूप से संबोधित करता है।
इसराइल के सब राजा उत्तर और दक्षिण दोनों राज्यों के पहचाने गए, और वे सब परमेश्वर के भविष्यवाणीमय वचन में प्रतीक है, जैसे अश्शूर के राजा और मिस्र के फिरौन भी है। ये विचार कि परमेश्वर का भविष्यवाणीमय वचन वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों को संबोधित करेगा, उन लोगों को अविश्वसनीय सा प्रतीत हो सकता है जिनकी आंखें हैं पर वे ग्रहण नहीं कर पाते, और जिनके कान हैं पर वे समझ नहीं पाते। परंतु ये सोचना वास्तव में और भी अधिक असंगत है कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में वर्णित पृथ्वी से निकलने वाले पशु के राष्ट्रपतियों को संबोधित नहीं करेगा, जबकि वही अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों का मुख्य संदर्भ बिंदु है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम राष्ट्रपति भविष्यवाणी का अनिवार्यता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा पूर्व चित्रित होगा। अंतिम रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में वह भविष्यवाणीगत अनिवार्यता के अनुसार प्रथम रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा पूर्व चित्रित होगा। अंतिम सुधार आंदोलन के इतिहास में अंतिम राष्ट्रपति के रूप में वह उस भविष्यवाणीगत काल के प्रथम राष्ट्रपति द्वारा भी पूर्व चित्रित किया गया है। अंतिम तथा तृतीय विश्व युद्ध के दौरान शासन करने वाले राष्ट्रपति के रूप में वह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के दौरान शासन करने वाले राष्ट्रपतियों द्वारा भी पूर्व चित्रित किया गया होता।
अमेरिकी इतिहास में घटित तीनों विश्व युद्ध भविष्यवाणी के त्रिविध अनुप्रयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तृतीय विश्व युद्ध, जिसमें जो बाइडेन अब समूची पृथ्वी को ले जा रहे हैं, का पूर्व रूप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रदर्शित हो चुका है। इसी समय बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय गृह युद्ध की ओर भी ले जा रहे हैं। आगामी महीनों में द्वितीय गृह युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध से संबद्ध भविष्यवाणी संबंधी घटनाक्रम केवल और अधिक तीव्रतर होते जाएंगे, जैसे प्रसव वेदनाओं में पड़ी स्त्री।
द्वितीय विश्व युद्ध के संकट के तीव्र होते दौर में जर्मन धर्मशास्त्री और लूथरन पादरी मार्टिन नीमोलर का एक प्रसिद्ध कथन था, पहले वे समाजवादियों के लिए आए और मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि मैं समाजवादी नहीं था। फिर वे ट्रेड यूनियनवादियों के लिए आए और मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनवादी नहीं था। फिर वे यहूदियों के लिए आए और मैंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और मेरे लिए बोलने वाला कोई शेष नहीं रहा।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा, हम इस समकालीन इतिहास की ओर मुड़कर देखेंगे और पहचानेंगे कि जो कार्य अब घटित हो रहे हैं वे वास्तव में भविष्यवाणी संबंधी इतिहास के अंतिम युद्धों के आरंभिक चरण थे।
1776 से 1798 तक दर्शाए गए भविष्य सूचक काल में, जहां स्वतंत्रता की घोषणा, संविधान और एलियन और सेडिशन एक्ट्स मार्ग चिन्ह थे, 11 सितंबर 2001 से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रैगन की भांति बोलने तक का इतिहास दर्शाया गया है। 11 सितंबर 2001 एक निर्णायक मोड़ था, और स्वतंत्रता की घोषणा उस तिथि के साथ मेल खाती है। स्वतंत्रता की घोषणा क्रांतिकारी युद्ध को भी चिह्नित करती है, और ये इंगित करती है कि 2001 का पैट्रियट एक्ट उस युद्ध की आध्यात्मिक पुनरावृत्ति की शुरुआत करता है। रेवोल्यूशन शब्द का अर्थ पूरा चक्कर लगाना होता है।
1776 से 1798 की अवधि में क्रांतिकारी युद्ध ने इंग्लैंड की राजसत्ता और सामान्य रूप से सभी राजाओं की सत्ता को अस्वीकार कर दिया।
संविधान ने केवल राजसत्ता पर ही नहीं बल्कि उतनी ही दृढ़ता से पोपवादी सत्ता पर भी सीमाएं लगाई। 1798 तक ऐसे कानून पारित होने के साथ क्रांति का चक्र पूरा हो गया था जो एक राष्ट्रपति को राजसी अधिकार प्रदान करते थे।
पेट्रियट एक्ट एक ऐसी क्रांति एक पहिया को चिह्नित करता है जो उस धरती के पशु तक पहुंचती है जो अजगर की तरह बोलता है, जहां पोपवादी शक्ति भी पुनर्स्थापित होती है। 1776 से 1798 तक का पहला पहिया एक भविष्य सूचक क्रांति को दर्शाता है जो राजसत्ता की पुनर्स्थापना की ओर ले जाती है, और जिस क्रांति का वो प्रतिरूप है वो ऐसी क्रांति की ओर संकेत करती है जो पोपवादी सत्ता की पुनर्स्थापना की ओर ले जाती है। दूसरा क्रांतिकारी युद्ध 11 सितंबर 2001 से जारी है, और क्या वजह होती कि उसे पेट्रियट एक्ट कहा जाता?
अंतिम राष्ट्रपति के इतिहास में घटित होने वाले युद्धों पर विचार करने से पूर्व हम पशु की प्रतिमा के भविष्यवाणीगत लक्षणों पर अपना विवेचन आगे बढ़ाएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि अंतिम राष्ट्रपति के काल में पशु की प्रतिमा के गठन के दौरान विद्यमान परिवेश को पहचाना जाए। वो राष्ट्रपति रिपब्लिकन दल का होना चाहिए जो अजगर शक्ति से संबद्ध शक्तियों के साथ संघर्ष में हो। वो अंतिम होना चाहिए, और इस प्रकार 8 राष्ट्रपतियों की एक अवधि में 8वां राष्ट्रपति होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के आरंभी 2 कालखंडों, दोनों कॉन्टिनेंटल कांग्रेसों में दोनों कालों का प्रतिनिधित्व 8-8 राष्ट्रपतियों ने किया, और दोनों ही कालखंडों में 8 में से 1 राष्ट्रपति को 7 में से 1 के रूप में निरूपित किया गया। अतः प्रारंभ के इन 2 साक्षियों के आधार पर अंतिम राष्ट्रपति अनिवार्यतः 8वां राष्ट्रपति होगा, अर्थात 7 में से।
केवल डोनाल्ड ट्रंप ही इन भविष्य सूचक तत्वों को पूरा करते हैं। जिस भविष्य सूचक तत्वों का उत्तराधिकार डोनाल्ड ट्रंप लेने वाले हैं, उसे पूरी तरह समझने के लिए ये समझना आवश्यक है कि भविष्य सूचक रूप से पहले 2 विश्वयुद्ध तीसरे विश्वयुद्ध में प्रतिबिंबित होते हैं, और उन युद्धों की भविष्य सूचक विशेषताएं भी उस वातावरण की ओर संकेत करती हैं जिसका उत्तराधिकार ट्रंप लेने वाले हैं। ये कहते हुए भी हम अभी तीनों विश्वयुद्धों का 13 अनुप्रयोग नहीं कर रहे हैं।
इस्लाम द्वारा लाया गया बढ़ता हुआ युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न वित्तीय समस्याएं वही माध्यम हैं जिनके द्वारा तीसरी विपत्ति का इस्लाम संयुक्त राज्य में पशु की प्रतिमा के निर्माण में झूठे नबी की भूमिका निभाता है। गधा, जो इस्लाम का झूठा नबी है, संयुक्त राज्य के झूठे नबी को यरूशलेम में ले जाता है, जैसे गधे ने मसीह को यरूशलेम में पहुंचाया था। उस यात्रा में ऐसा भविष्यद्वाणी परक परिवेश निर्मित होता है जो पूर्व की भविष्यवाणियों की पूर्तियों को जन्म देता है। 1798 में एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स को उस धरती के पशु के इतिहास के एकदम आरंभ में ही उच्चारित किया गया, उस पशु के जो मेमने के समान आरंभ करेगा और अंत में अजगर के समान बोलेगा। एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स में 4 अधिनियम निहित थे।
प्राकृतिक करण अधिनियम, इस अधिनियम ने अमेरिकी नागरिकता के लिए अनिवार्य निवास अवधि बढ़ा दी।
एलियन फ्रेंड्स अधिनियम, इस कानून ने राष्ट्रपति को शांति के समय उन गैर नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार दिया जिन्हें संयुक्त राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया हो। इसने सरकार को विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किए बिना विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने और निर्वासित करने की अनुमति दी।
विदेशी शत्रु अधिनियम, इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को युद्धकाल में शत्रुतापूर्ण राष्ट्र के किसी भी पुरुष नागरिक को हिरासत में लेने और देश से निष्कासित करने का अधिकार दिया।
राजद्रोह अधिनियम, चारों में सबसे विवादास्पद, इस अधिनियम ने अमेरिकी सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ झूठी, अपमानजनक या दुर्भावनापूर्ण लिखित सामग्री प्रकाशित करना अपराध बना दिया। इसने व्यावहारिक रूप से सरकार की आलोचना को दंडनीय बना दिया।
डोनाल्ड ट्रंप का अभियान मुख्य रूप से इस वादे पर आधारित है कि वह अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल में शुरू किए गए दीवार के निर्माण को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि 2024 में उनके चुने जाने पर मानव इतिहास का सबसे बड़ा निर्वासन होगा। अमेरिकी राजनीति के परिदृश्य में ट्रंप का एक व्यक्तिगत गुण है जो किसी अन्य राजनेता जैसा नहीं है।
वे अपने चुनावी वादे निभाते हैं या कम से कम उन्हें निभाने का प्रयास करते हैं। एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स ऐसे कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो निर्वासन के उनके वादे के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं।
ट्रंप के सबसे बड़े आरोपों में से एक उस जमे जमाए डीसी राजनीतिक प्रतिष्ठान से जुड़ा है, जिसे उन्होंने दलदल कहा। उसके भ्रष्ट, अनैतिक और समझौता कर चुके राजनेता, पेशेवर नौकरशाह, संक्षिप्त नाम वाली एजेंसियां और अरबपति वित्त पोषक सहित, और वो है फेक न्यूज, जो हिटलर के जन प्रबोधन और प्रचार के राइख मंत्रालय के आधुनिक रूप द्वारा पैदा किया जाता है और जिसे आज MSM मेनस्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। एलियन और सेडिशन अधिनियम ऐसे कानूनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो फेक न्यूज के प्रति उनकी घृणा से पूरी तरह मेल खाते हैं। यीशु हमेशा किसी चीज का अंत उसकी शुरुआत से दिखाते हैं।
पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति को उस गृहयुद्ध से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे लिंकन के डेमोक्रेट पूर्ववर्ती बुकेनन ने उत्पन्न किया था। ऐसा करते हुए लिंकन ने हैबियस कॉर्प्स के अधिकार को निलंबित कर दिया। हैबियस कॉर्प्स एक कानूनी सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति की अदालत में अपनी हिरासत या कारावास को चुनौती देने के अधिकार की रक्षा करता है। ये एक मौलिक कानूनी अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को वैध कारण के बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जब किसी निरुद्ध व्यक्ति की ओर से हैबियस कॉर्प्स की रिट दायर की जाती है तो ये सरकार को अदालत के सामने उसकी हिरासत का औचित्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करती है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान लिंकन ने युद्धकालीन कदम के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में हैबियस कॉर्पस के रिट को निलंबित किया। उन्होंने पहली बार अप्रैल 1857 में मैरीलैंड में हैबियस कॉर्पस निलंबित किया और बाद में इस निलंबन को मध्य पश्चिम के कुछ हिस्सों तक बढ़ाया। ये कदम उन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असहमति को दबाने के लिए उठाया गया था जहां अलगाववादी या कॉन्फेडरेट के प्रति मजबूत सहानुभूति डेमोक्रेट्स थी और यूनियन के युद्ध प्रयास में हस्तक्षेप को रोकने के लिए। लिंकन द्वारा हैबियस कॉर्पस का निलंबन विवादास्पद था और इसने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक नागरिक स्वतंत्रता ऐसा ही निलंबन शामिल था। संविधान हैबियस कॉर्पस की रिट के निलंबन की अनुमति देता है जब विद्रोह या आक्रमण के मामलों में सार्वजनिक सुरक्षा इसकी मांग करे। अनुच्छेद I अनुभाग 9। लिंकन ने अपने कदमों का बचाव इस आधार पर किया कि वे युद्ध के समय संघ के संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। 1863 में कांग्रेस ने हैबियस कॉर्पस निलंबन अधिनियम पारित किया जिसने पूर्वव्यापी रूप से लिंकन द्वारा हैबियस कॉर्पस के निलंबन को अधिकृत किया और सैन्य हिरासत के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की। ग्रे युद्ध के बाद के वर्षों में जैसे जैसे संघर्ष समाप्त हुआ और देश शांति की स्थिति में लौट आया, हैबियस कॉर्पस को धीरे धीरे बहाल कर दिया गया। 1871 में राष्ट्रपति ये यूलिसिस एस ग्रांट, एक रिपब्लिकन, ने पुनर्निर्माण काल के दौरान कू क्लक्स क्लैन डेमोक्रेट्स के आतंक के राज में दक्षिण कैरोलिना की 9 काउंटियों में हैबियस कॉर्पस को भी निलंबित कर दिया। ये निलंबन हिंसा का मुकाबला करने और नवमुक्त अफ्रीकी अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था।
1942 में राष्ट्रपति फाइडरक्रिन डी रूजवेल डेमोक्रेट ने ट्विनी द विश्व युद्ध के दौरान कार्यकारी आदेश 109,066 पर हस्ताक्षर किए जिसने पश्चिमी तट पर रहने वाले जापानी अमेरिकियों के जबरन स्थानांतरण और नजरबंदी को अधिकृत किया। यद्यपि इसे तकनीकी रूप से हैबियस कॉर्पस निलंबित नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जापानी अमेरिकियों को विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना हिरासत में लिया गया और अंडर के कानूनी अधिकारों का गंभीर हनन हुआ।
फिर 2001 में आखिरी बुश, एक वैश्विकतावादी रिपब्लिकन ने 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद ग्वांतानामो बे और अन्य सुविधाओं पर संदिग्ध शत्रु लड़ाकों को हिरासत में रखने को अधिकृत किया। इन व्यक्तियों की हिरासत और उनकी कानूनी स्थिति हैबियस कॉर्पस से संबंधित कानूनी चुनौतियों का विषय बन गए। फिर 2021 में 6 जनवरी के पेलोसी एक डेमोक्रेट मुकदमों ने हैबियस कॉर्पस को निलंबित करने, विधि सम्मत प्रक्रिया को हटाने और असंवैधानिक नजरबंदी लागू करने की अवधारणा को आगे बढ़ाया।
2021 के पेलोसी मुकदमों की ये विशेषता है कि पहली बार अमेरिकी नागरिकों के कानूनी अधिकारों को केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दरकिनार किया गया। इससे पहले हर बार कोई वास्तविक युद्ध या विद्रोह होता था जो विशिष्ट शत्रु तत्वों की पहचान करता था। पेलोसी मुकदमों में शत्रु बस ड्रैगन से प्रेरित वे विश्ववादियों के शत्रु थे। संविधान को पलट देने से जुड़े मुद्दों में निहित भविष्यवाणी संबंधी प्रवृत्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वे घटनाएं हैं जो पशु की प्रतिमा के गठन को चिन्हित करती हैं, और वही परमेश्वर की प्रजा के लिए महान परीक्षा है।
ये मायने नहीं रखता कि पेलोसी आपकी नायिका है या ट्रंप आपके चैंपियन। मायने ये रखता है कि आप आसन्न संकट को पहचाने और उचित तैयारी करें। आने वाले संकट में जो विजयी होंगे वे स्वर्गीय यरूशलेम के नागरिक हैं, और जो भी शक्तियां परमेश्वर की व्यवस्था से धर्म त्याग कर चुकी हैं वे सब एकजुट होने वाली हैं, जैसे सदूकी डेमोक्रेट्स और फरीसी रिपब्लिकन्स परमेश्वर के विश्वास योग्य बच्चों के विरुद्ध एक हो गए थे, जबकि पशु की छवि निर्मित हो रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्लाम के झूठे नबी या विश्व में धर्म त्यागी प्रोटेस्टेंटवाद द्वारा किया गया छल ही चर्च और राज्य के एकीकरण को जन्म देता है। सिस्टर वाइट बताती हैं कि एक और गृह युद्ध होगा और इसे वैश्विक बैंकरों और अरबपतियों द्वारा लाया जाएगा, जो आधुनिक बाबुल के व्यापारी हैं और जो भविष्यवाणी के अनुसार अजगर की शक्तियों के प्रतिनिधियों का आधा हिस्सा है। दूसरा आधा हिस्सा पेशेवर राजनेता, वकील, राजा और शासक है।
भारत, चीन, रूस और अमेरिका के शहरों में हजारों पुरुष और महिलाएं भुखमरी से मर रहे हैं। धनाढ्य लोग, क्योंकि उनके पास शक्ति है, बाजार को नियंत्रित करते हैं। वे जितना भी हासिल कर सकते हैं उसे कम दरों पर खरीद लेते हैं और फिर उसे बहुत अधिक बढ़ी हुई कीमतों पर बेचते हैं। इसका मतलब गरीब वर्गों के लिए भुखमरी है और इसका परिणाम एक गृहवाड़ होगा। मैन्युस्क्रिप्ट रिलीजेस, खंड 5, 303।
क्रांतिकारी युद्ध एक वास्तविक युद्ध था, परंतु वो उस राजनीतिक युद्ध का प्रतिनिधित्व करता था जिसका आरंभ 11 सितंबर 2001 को हुआ। संयुक्त राज्य अब दो राजनीतिक दलों के बीच विभाजित एक राष्ट्र है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं होता, और उसका वचन ये घोषित करता है कि ट्रंप 2024 के चुनावों में पुनर्निर्वाचित होंगे। एक गृह युद्ध जो व्यवहारतः पहले ही आरंभ हो चुका है, उसके निर्वाचन के शीघ्र पश्चात पूरी गंभीरता से प्रारंभ होगा, जैसा कि प्रथम रिपब्लिकन राष्ट्रपति लिंक दराश में हप करती था। जिस गृह युद्ध की विरासत वो पाएगा, उसका आधारभूत तर्क वैश्विक बैंकरों और अरबपति व्यापारियों द्वारा निर्मित किया जाएगा, जो अन्य बातों के साथ साथ समस्त विश्व में अनियंत्रित सामूहिक आप्रवासन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्यरत रहे हैं, ताकि अपने अधिकाधिक वित्तीय लाभ की लालसा को हवा दे सके, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से मध्यम वर्ग का उन्मूलन कर सकें। बाबुल के व्यापारी अति धनाढ़ियों और अति दरिद्रों की एक द्विवर्गीय व्यवस्था विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
ट्रंप वो राष्ट्रपति होगा जो पशु की प्रतिमा की स्थापना की अध्यक्षता करेगा और उस प्रतिमा को स्थापित करवाने के लिए बाध्य करने वाला इस्लाम का झूठा भविष्यद्वक्ता होगा, और जिनकी आंखें हैं और जो परख सकते हैं तथा जिनके कान हैं और जो समझ सकते हैं, उनके लिए 7 अक्टूबर 2023 को तीसरे हाई के अंतर्गत इस्लाम द्वारा शाब्दिक इसराइल व प्राचीन महिमामय देश पर किया गया आक्रमण इस्लाम के झूठे भविष्यद्वक्ता के ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य की एक स्पष्ट परिपूर्ति है।
डेमोक्रेटिक पार्टी, जो खुद को विविधता, समानता और समावेश की पार्टी के रूप में प्रस्तुत करती है, अब उस शैतानी विचारधारा के फल भोग रही है जिसे उसने बढ़ावा दिया था। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल विरोधी बनाम इसराइल पक्षधर तर्क वितर्क 2024 के चुनाव के करीब आते आते उनकी पार्टी की राजनीतिक ताकत को दरका रहा है। इस विभाजन ने उनके समर्थकों के बीच इतनी अंदरूनी लड़ाई पैदा कर दी है कि उनकी भ्रष्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें अब शायद इतने वोटों में हेरफेर करने में सक्षम न रहें कि ट्रंप के लिए डाले जाने वाले वास्तविक मतों पर भारी पड़ सकें। इस्लाम के झूठे पैगंबर का युद्ध ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जो ट्रंप को आठवें राष्ट्रपति के रूप में चुनवाती है, जो सात में से ही है, 1985 में अंत के समय से, जैसे पृथ्वी का पशु समुद्र के पशु का प्रतिरूप बनाता है।
विविधता, समानता और समावेशन की शैतानी विचारधारा LGBTQ+ एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए सदोम और गोमोरा के विद्रोह की नकल करने के मंचों में से एक है।
वैसे ही जैसे लूत के दिनों में था, वे खाते थे, पीते थे, खरीदते थे, बेचते थे, लगाते थे और बनाते थे। परंतु उसी दिन जब लूत सोधोम से निकला, स्वर्ग से आग और गंधक की वर्षा हुई और उन सब का नाश हो गया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूका 17:28-30।
LGBTQ+ एजेंडा को गे प्राइड के रूप में भी दर्शाया जाता है और इस प्रकार ये पृथ्वी के पशु के अंतिम नैतिक पतन का तथा तत्पश्चात विश्व का संकेत करता है।
धर्मियों का राजमार्ग बुराई से दूर रहना है। जो अपने मार्ग की रक्षा करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। विनाश से पहले अभिमान होता है और पतन से पहले अहंकारी आत्मा। दीनों के साथ विनीत आत्मा रखना अभिमानियों के साथ लूट बांटने से उत्तम है। नीति वचन 16:17-19।
घमंड पतन से पहले आता है और घमंड विनाश से पहले आता है। राष्ट्रीय धर्म त्याग राष्ट्रीय विनाश लाता है और वैश्विकतावादी घमंड का प्रतीक वही है जो सदोम और गमोरा के विद्रोह का प्रतीक है। प्रेरणा निकट आने वाले रविवार के कानून को लूत के सदोम, गमोरा और मैदान के नगरों के विनाश से बमुश्किल बच निकलने के साथ संरेखित करती है, क्योंकि लूत के वंशज अम्मोन और मोबाब ही उन लोगों के प्रतीक हैं जो रविवार के कानून के समय पापसी के हाथ से बच निकलते हैं।
वो उस महिमामय देश में भी प्रवेश करेगा और बहुत से मेष उलट दिए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदूम और मोआब और अम्मोनियों के प्रधान जन। दानियल 11:50।
डेमोक्रेटिक पार्टी अब अपने ही हाथों से भीतर ही भीतर ध्वस्त हो रही है। मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं, मैं बस समकालीन इतिहास को भविष्यवाणी के आख्यान के साथ मिलाकर देख रहा हूँ। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दुनिया भर की सीमाएं खोलने के लिए अथक काम किया है, जिससे लोगों का अभूतपूर्व और अनियंत्रित सैलाब संभव हुआ है। ड्रैगन प्रेरित वैश्विकवादियों ने दुनिया भर में बाढ़ के फाटक खोल दिए हैं।
और उस सर्प ने स्त्री के पीछे अपने मुख से बाढ़ के समान जल उगल दिया, ताकि वो बाढ़ उसे बहा ले जाए। और पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और पृथ्वी ने अपना मुख खोल दिया और उस बाढ़ को निगल लिया जो अजगर ने अपने मुख से उगली थी। और अजगर उस स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी संतति के शेष लोगों से युद्ध करने को गया, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु मसीह की गवाही रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:15-17।
शेष जन 144,000 है और 144,000 का इतिहास 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ। तब से अजगर की शक्ति हर दिशा में अपने मुख से बाढ़ के समान पानी उगलती आ रही है। जल लोगों का प्रतीक है।
और उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखा, जहां वो वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़ें, जातियां और भाषाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 17:15।
अजगर शक्ति के प्रति तवासिलंबू पृथ्वीस्थित प्रतिनिधि वैश्वीकरणवादी ही हैं, जो 144,000 के मुद्रांकन काल में अवैध आप्रवासन की बाढ़ के फाटक खोल देते हैं। संसार भर में अजगर की बाढ़ हैं, ये इंगित करती हैं कि प्रभु आसन्न रविवार कानून के समय अपनी पताका उठाने ही वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 12 में वर्णित अजगर की बाढ़ों को संयुक्त राज्य अमेरिका के आरंभ में पृथ्वी के पशु ने निगल लिया था, परंतु अब अजगर की वे बाढ़ हैं फिर लौट आई हैं, और इस प्रकार आसन्न रविवार कानून के संकट की चेतावनी देती हैं। क्योंकि जब शत्रु बाढ़ की भांति धावा करता है, तब परमेश्वर अपनी पताका उठाता है।
यहोवा के विरुद्ध अपराध करना और झूठ बोलना, अपने परमेश्वर से भटक जाना, अत्याचार और विद्रोह की बातें करना, कपट की बातें मन में गढ़ना और उन्हें हृदय से बोलना, और न्याय पीछे हट गया है और धर्म दूर खड़ा है, क्योंकि सच्चाई मार्ग में गिर पड़ी है और सीधाई भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, सच्चाई लुप्त हो गई है और जो बुराई से हटता है वो लूट का शिकार बनता है। और यहोवा ने ये देखा और ये उसे अप्रसन्न लगा कि वहां न्याय नहीं था, और उसने देखा कि कोई मनुष्य नहीं था, और ये देखकर अचंभित हुआ कि कोई मध्यस्थ नहीं था। इसलिए उसकी भुजा ने उसके लिए उद्धार किया और उसकी धार्मिकता ने उसे सहारा दिया, क्योंकि उसने धार्मिकता को कवच के समान पहना और अपने सिर पर उद्धार का टोप रखा, और उसने प्रतिशोध के वस्त्र पहन लिए और उत्साह को चादर की तरह ओढ़ लिया। उनके कामों के अनुसार वैसा ही वो बदला देगा, अपने विरोधियों पर प्रकोप, अपने शत्रुओं को प्रत्युपकार, द्वीपों को भी वो प्रतिथल चुकाएगा। तब वे पश्चिम से यहोवा के नाम का भय मानेंगे और सूर्य के उदय होने के स्थान से इसकी महिमा का। जब शत्रु बाढ़ की तरह आएगा तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध एक पताका उठाएगा, और उद्धारकर्ता सियोन में आएगा और याकूब में जो अपने अपराध से फिरते हैं उनके पास। यहोवा का यही वचन है, मेरी ओर से उनसे मेरी ये वाचा है, यहोवा कहता है, मेरा आत्मा जो तुझ पर है और मेरे वचन जिन्हें मैंने तेरे मुख में रखा है, वे न तेरे मुख से हटेंगे, न तेरी संतान के मुख से, न तेरी संतान की संतान के मुख से। यहोवा का यही वचन है अब से लेकर सदा तक। यशाया इंगोवा 13-21।
जब शत्रु बाढ़ की भांति आता है तब जो ध्वज ऊपर उठाया जाता है वही पताका है, और वही परमेश्वर के वचन में भी मानदंड है। शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से ठीक पहले के समय में अवैध आव्रजन की बाढ़ इस बात का संकेत है कि अनुग्रह का समय बंद होने को है, जिस परिस्थिति का यशाया उल्लेख करता है जब वो मानदंड के उठाए जाने की बात करता है। वो विधि विहीनता के एक काल का वर्णन करती है, क्योंकि वो कहता है न्याय पीछे धकेल दिया गया है और धर्म दूर खड़ा है, क्योंकि सत्य सड़क पर गिर पड़ा है और समता भीतर आ नहीं सकती। हाँ, सत्य लुप्त है और जो बुराई से हटता है वो अपने आप को शिकार बना लेता है, और प्रभु ने देखा और उसे बुरा लगा कि वहां न्याय न था, और उसने देखा कि कोई मनुष्य न था, और ये देखकर आश्चर्य किया कि कोई मध्यस्थ न था। वो अराजकता जिसका वित्त पोषण जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों ने किया है और जिसे डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनेताओं ने अनदेखा किया है। यशाया की इस खंड के संबंध में बहन व्हाइट द्वारा यथोचित रीति से वर्णित की गई है।
न्यायालय भ्रष्ट हैं, शासक लाभ की लालसा और इंद्रिय सुख के प्रेम से प्रेरित होते हैं। असंयम ने बहुतों की समझबूझ को इतना धुंधला कर दिया है कि शैतान को उन पर लगभग पूरा नियंत्रण हो गया है। न्यायविद पतित, रिश्वतखोर और भ्रमित हैं। मद्यपान और उच्च श्रृंखलता, वासना, ईर्ष्या, हर प्रकार की बेईमानी, ये सब उन लोगों में पाई जाती है जो कानून का प्रशासन करते हैं। न्याय दूर खड़ा है, क्योंकि सत्य सड़क पर गिर पड़ा है और धर्म प्रवेश नहीं कर सकता। यशाया 59:12 साइट। महान संघर्ष, प्रतीत 1500-868।
अवैध आव्रजन, एंटीफा, एंटीफासिस्ट जैसे अराजकतावादी आंदोलन और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे हिंसक आंदोलन, जो क्रिटिकल रेस थ्योरी जैसे विकृत ऐतिहासिक आख्यान पर आधारित है, का समर्थन और बढ़ावा अजगर के राजनीतिक शासकों द्वारा दिया गया है, जो धन के प्रेम से प्रेरित रहे हैं, और भ्रष्ट न्यायालयों व न्यायविदों ने सत्य को उसी सड़क पर फेंक दिया है जहां प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में दो गवाहों की हत्या की गई थी। वो सड़क नास्तिकता, मिस्र और अनैतिकता सोदोम के नगर में थी, जो अजगर और उसके प्रतिनिधियों का ही नगर है। डेमोक्रेटिक पार्टी के फलों से जो वातावरण प्रकट होता है उसे भविष्यवाणी में बाहर के रूप में दर्शाया गया है, और जब शैतान, जो परमेश्वर का शत्रु है, अपने बाढ़ के फाटक खोल देता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का ध्वज उठाए जाने ही वाला है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
दुनिया की स्थिति बताती है कि संकट भरे समय हम पर आ पहुंचे हैं। दैनिक अखबार निकट भविष्य की एक भयानक संघर्ष के संकेतों से भरे पड़े हैं। दुस्साहसी लूटपाट अक्सर हो रही हैं, हड़तालें आम हो गई हैं, हर ओर चोरी और हत्याएं की जा रही हैं। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग पुरुषों, स्त्रियों और नन्हे बच्चों की जान ले रहे हैं। लोग दुर्व्यसनों के प्रति मोहग्रस्त हो गए हैं और हर प्रकार की बुराई छाई हुई है। शत्रु न्याय को विकृत करने में और लोगों के हदों को स्वार्थी लाभ की लालसा से भर देने में सफल हो गया है। न्याय दूर खड़ा है, क्योंकि सच्चाई सड़क पर गिर पड़ी है और निष्पक्षता भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। यशायाह 59:49। बड़े बड़े शहरों में असंख्य लोग गरीबी और दुर्दशा में जी रहे हैं, भोजन, आश्रय और वस्त्र के लगभग अभाव में, जबकि इन्हीं शहरों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास दिल की चाहत से भी बढ़कर सब कुछ है, जो ऐशो आराम से रहते हैं, अपना धन सुसज्जित घरों, निजी श्रृंगार पर और इससे भी बुरा इंद्रिय सुख की तृप्ति पर, शराब, तंबाकू और ऐसी अन्य चीजों पर खर्च करते हैं जो मस्तिष्क की शक्तियों को नष्ट करती हैं, मन को असंतुलित करती हैं और आत्मा को अदम बनाती हैं। भूखी मानवता की पुकारें परमेश्वर के सामने पहुंच रही हैं, जबकि हर तरह के अत्याचार और उगाही के द्वारा लोग अपार धन संपत्ति बटोरते जा रहे हैं। रात्रि के समय मुझे ये दिखाया गया कि भवन आकाश की ओर मंजिल पर मंजिल उठते जा रहे थे। इन भवनों के बारे में ये गारंटी दी गई थी कि वे अग्निरोधी हैं और उन्हें मालिकों तथा निर्माताओं का महिमा मंडन करने के लिए खड़ा किया गया था। ये भवन लगातार और अधिक ऊंचे उठते गए और उनमें सबसे महंगी सामग्री का उपयोग किया गया था। जिनके ये भवन थे वे अपने आप से ये नहीं पूछ रहे थे, हम परमेश्वर की महिमा सर्वोत्तम रूप से कैसे करें। परमेश्वर उनके विचारों में नहीं थे। जब ये ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थीं, तो मालिक महत्वाकांक्षी गर्व के साथ इस बात पर आनंदित थे कि उनके पास इतना धन है कि उसे अपने स्वार्थ की तृप्ति में और अपने पड़ोसियों में ईर्ष्या भड़काने में खर्च कर सकें। जिस धन को उन्होंने इस प्रकार लगा दिया, उसका बहुत सा भाग जबरदस्ती की वसूली से गरीबों को पिसाकर प्राप्त किया गया था। वे ये भूल गए कि स्वर्ग में हर व्यापारिक लेन देन का लेखा रखा जाता है। हर अन्यायी सौदा, हर धोखाधड़ी वहां दर्ज होती है। समय आ रहा है जब अपने छल और उद्दंडता में मनुष्य ऐसी सीमा तक पहुंचेंगे जिसे प्रभु उन्हें पार करने नहीं देंगे, और वे जानेंगे कि यहोवा की सहनशीलता की भी एक सीमा है। मेरे सामने जो अगला दृश्य उभरा वो आग लगने की चेतावनी का था। लोगों ने ऊंची और कथित रूप से अग्निरोधी इमारतों को देखा और कहा, ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ये इमारतें ऐसे भस्म हो गईं मानो वे तारकोल से बनी हों। विनाश को रोकने के लिए दमकल की गाड़ियां कुछ भी नहीं कर सकीं। दमकल कर्मी इंजनों को चलाने में असमर्थ थे। टेस्टिमोनीज खंड 9:12-13।